प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहनों व मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से गिनती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इसके 22 और 23 अध्यायों का अध्ययन करेंगे, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। दयालु प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी समस्या में उलझा हुआ है या अपने जीवन में अशांत या निराश है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो मित्राइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दिनों हम पुराने नियम से गिनती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 22 को प्रारंभ करते हैं। गिनती की पुस्तक के 22वें अध्याय का शीर्षक है बिलाम का मार्ग। बिलाम का मार्ग लोभ का मार्ग था। अध्याय 22 से 25 में हम बिलाम की भविष्यवाणी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये एक भविष्यद्वक्ता है जो अन्य जाति भविष्यद्वक्ता है। बिलाम भी पवित्र बाइबल के गूढ़ तथा रहस्यपूर्ण चरित्रों में से एक है। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि ये बाइबल का सबसे रहस्यपूर्ण चरित्र है। कुछ लोग इसे परमेश्वर का उचित नबी मानते हैं तो कुछ लोग इसे धार्मिक गुंडा भी मानते हैं। या क्या बिलाम वास्तव में परमेश्वर पिता की इच्छा को पूर्ण करना चाहता था? क्या वो उसकी इच्छा को खोज रहा था या वो बेईमान और नकली नबी था? इसका निर्णय लेने के लिए हमें उसके विषय में जानना अति आवश्यक है। बिना जानकारी प्राप्त करे हम उसके विषय में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। हम उसे अस्वीकार करने का भी अधिकार रखते हैं, परंतु परमेश्वर पिता ने पवित्र शास्त्र में उसे एक विशेष महत्व से रखा है। देखिए मीका नबी इसके विषय में क्या लिखते हैं। मीका नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 5 पद। यहां मीका नबी इसराइल से कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि तुम बिलाम को ना भूलो, अर्थात उसे स्मरण रखो। इसलिए हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम इस चरित्र को एक ओर ना रख दें, वरन इसे स्मरण रखें। नया नियम इस चरित्र को तीन बार हमारे ध्यान में लाता है और तीनों स्थानों पर ये स्वधर्म त्याग के उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया है। पत्रस की दूसरी पत्री में उसके दूसरे अध्याय के 15वें पद में हम पढ़ते हैं कि बिलाम का मार्ग अधर्म का मार्ग था। यहूदा की पत्री के 11वें पद में बताया गया है कि बिलाम बिना विचारे भूल करने वाले व्यक्ति के का रूप है, अर्थात बिलाम को बिना विचारे भूल करने वाले व्यक्ति के रूप में हमको दर्शाया गया है। तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें बिलाम के धर्म विज्ञान के विषय में बताया गया है। ये बिलाम मिद्यानी पुरुष था। वो बड़ा प्रतिष्ठित भविष्यद्वक्ता था, किंतु क्या वो सच्चा नबी था? तो इससे पूर्व कि हम उसका मूल्यांकन करें, आइए हम उसके विषय में बाइबल पवित्र शास्त्र से उचित जानकारी प्राप्त कर लें। आप हमारे साथ गिनती की पुस्तक के 22वें अध्याय के 1-3 पदों को देखें। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, तब इसराइलियों ने प्रस्थान करके यरदन के उस पार यरीहो के सामने मोआब की तराई में डेरे खड़े किए। जो कुछ इसराइल ने एमोरियों के साथ किया था, सिप्पोर के पुत्र बालाक ने उसे देखा था। अतः इसराइलियों के कारण मोआब अत्यंत भयभीत था, क्योंकि वे संख्या में बहुत थे और इसलिए वह इसराइल से आतंकित था। मित्रों, हम देख रहे हैं कि इसराइली अब प्रतिज्ञा के देश में प्रविष्ट होने को तैयार हैं। बालाक जो मोआबी राजा है, वो इस घटना का साक्षी है जो एमोरी राजा तथा बाशान के राजा ओक के साथ घटी। इसलिए वो परेशान है कि इसराइलियों को अपने देश की सीमा से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए। क्या उसे उन पर आक्रमण करना चाहिए? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, और इसलिए उसने ये निश्चय किया कि इस कार्य के लिए नबी की सेवाएं प्राप्त की जाएं। और तब 4-6 पदों में इस प्रकार से बताया गया है, और मोआबियों ने मिद्यान के पुरनियों से कहा, ये झुंड तो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को ऐसा चट कर जाएगा जैसे मैदान की हरी घास को बैल। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। तब उसने फरात के तट पर स्थित पतोर नगर में, जो बिलाम के सगे संबंधियों की भूमि थी, बाओर के पुत्र बिलाम के पास ये कहकर अपने संदेशवाहक भेजे, देख एक जाति मिस्र से निकलकर आई है, उसके लोगों ने देश की समस्त भूमि को छा लिया है और अब वे मेरे सामने ही बस गए हैं। इसलिए कृपया आकर मेरे लिए इनको शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। कदाचित मैं उनको हरा कर देश से बाहर खदेड़ दूं, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीष देता है वह आशीषित होता है और जिसको शाप देता है वह शापित होता है। मित्रों, वो बिलाम के पास संदेशवाहकों को भेजता है, क्योंकि ये नबी उस समस्त क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति था। बालाक राजा इस नबी को किराए पर बुलाकर इसराइलियों को श्राप दिलाना चाहता है और वो उनको यरदन नदी के आसपास के क्षेत्र से दूर भगाना चाहता है। वो श्राप इसलिए दिलाना चाहता है क्योंकि वह इसराइलियों के सामने अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहा है। 7वां पद हमको बताता है कि वास्तव में इस व्यक्ति बिलाम की बड़ी प्रतिष्ठा थी। बिलाम एक भविष्य बताने वाला व्यक्ति है। बालाक राजा अपने संदेशवाहकों द्वारा उसकी उत्तम से उत्तम कीमत चुकाता है। वो उत्तम से उत्तम वस्तुएं उसको दक्षिणा के रूप में भेंट करता है। और 8वें पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, आज रात भर यहीं ठहरो और जो बात यहोवा मुझसे कहे वही मैं तुमको बताऊंगा। और मोआब के वे अधिकारी बिलाम के यहां ठहर गए। अब यहां वो स्वयं को परमेश्वर का नबी दर्शाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के संपर्क में रहता हो। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए, 9-11 पदों में बड़ी रुचिकर बात यहां पर बताई गई है। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर कहा, तेरे यहां ये कौन मनुष्य हैं? और बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मुझे ये संदेश भेजा है कि देख एक जाति मिस्र से निकल कर आई है और उसने देश की समस्त भूमि को छा लिया है, अब आकर मेरे लिए इनको शाप दे, कदाचित मैं उनके विरुद्ध लड़कर उन्हें देश से बाहर खदेड़ दूं। और परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत देना, क्योंकि वे धन्य हैं। अतः बिलाम ने प्रातः उठकर बालाक के अधिकारियों से कहा, तुम अपने देश वापस चले जाओ, क्योंकि यहोवा ने मुझे तुम्हारे संग जाने को मना कर दिया है। मित्रों, ये बड़ी रुचिकर बात है कि परमेश्वर उनके उसके साथ वार्तालाप करते हैं। अब 12वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने बिलाम को वास्तविकता बता दी कि वे लोग मेरी दृष्टि में धन्य हैं, अर्थात इसराइली लोग मेरी दृष्टि में धन्य हैं, इसलिए तू उनके विरुद्ध कोई उपाय मत करना, तू इन संदेशवाहकों के साथ मत जा, परंतु आप अब बिलाम पर ध्यान दें, वो क्या करता है। 13वां पद देखें, बिलाम ने प्रातः उठकर बालाक के अधिकारियों से कहा, तुम अपने देश वापस चले जाओ, क्योंकि यहोवा ने मुझे तुम्हारे संग जाने को मना कर दिया है। परंतु इस कहानी का अंत ये नहीं है। बिलाम वास्तव में एक हठीला व्यक्ति था। और तब हम 14वें पद से देखते हैं, तब मोआब के अधिकारी उठकर बालाक के पास चले गए, उन्होंने कहा, बिलाम ने हमारे संग आने को मना कर दिया है। इस पर बालाक ने फिर से अधिकारी भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और संख्या में अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक इस प्रकार कहता है, निवेदन है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई बाधा ना हो, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत सम्मानित करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं करूंगा, कृपया तू आकर मेरे लिए इस जाति को शाप दे। और यहां हम देखते हैं कि बालाक राजा बिलाम को उत्तम से उत्तम मोल चुकाने को तैयार है। 18वें पद में लिखा है, और बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर देकर कहा, चाहे बालाक अपना घर सोने और चांदी से भी भरकर मुझे दे, फिर भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध ना तो घटाकर और ना बढ़ाकर कुछ कर सकता हूं। यहां हम देखते हैं कि बालाक ने और भी अधिक मूल्य बढ़ा दिया है, परंतु ये व्यक्ति बिलाम किसी प्रकार से अपने स्थान से टस से मस नहीं हो रहा है, और इस बड़ी दक्षिणा का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, और अब वो हमें बड़ा ही पवित्र व्यक्ति दिखाई दे रहा है। परंतु यहां एक दूसरा विचार सामने आ रहा है जो बिलाम की मनहा स्थिति को दर्शा रहा है। उसने ये क्यों कहा कि चाहे उसका घर सोने चांदी से भर दिया जाए, ये उसने इसलिए कहा कि ये उसके मन में था। वो इसके विषय में विचार कर रहा था। वो एक लालची व्यक्ति था और उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। 19वें पद को देखें, अब आज रात कृपा करके तुम भी यहीं ठहरो कि मैं जान सकूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। मित्रों, इस बात को हम स्पष्ट रूप में अब समझ लेंगे। और 20वें पद में लिखा है, और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि ये मनुष्य तुझे बुलाने के लिए आए हैं तो तू उठकर उनके साथ चला जा, परंतु जो कुछ मैं तुझसे कहूं केवल वही करना। अब धीरे धीरे इस व्यक्ति की स्थिति हमारे समक्ष स्पष्ट होती जा रही है। परमेश्वर ने उसे पहले ही से बता दिया था कि वो वहां ना जाए, परंतु आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस बात की आशा कर रहा है कि परमेश्वर पिताजी कोई छोटी सी दरार ही दिखाई दें कि उसी में से मैं अपना पांव बाहर निकाल लूं, और यदि उसने मुझे एक कदम बढ़ाने की अनुमति दे दी तो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। और तब हम 21वें पद से आगे एक महत्वपूर्ण और रुचिकर वृत्तांत पढ़ेंगे। आइए हमारे साथ देखें, तब बिलाम प्रातः उठा और अपनी गधी पर काठी कसकर मोआब के अधिकारियों के साथ चल पड़ा, किंतु उसके वहां जाने से परमेश्वर क्रोधित हो गया और यहोवा का एक दूत विरोधी की भांति उसका मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। बिलाम तो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके साथ उसके दो सेवक भी थे। जब उस गधी ने यहोवा के दूत को अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़े देखा तो वह मार्ग से हटकर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह पुनः उसी मार्ग पर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारियों की दीवारें थीं, आ खड़ा हुआ। जब उस गधी ने यहोवा के दूत को देखा तो वह दीवार से ऐसे सटकर अड़ गई कि बिलाम का पैर दीवार में दब गया। तब उसने उसे फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक ऐसे संकरे स्थान पर खड़ा हो गया जहां दाहिने अथवा बाएं मुड़ने का कोई रास्ता ना था। जब गधी ने यहोवा के दूत को देखा तो बिलाम को लिए हुए वह वहीं बैठ गई। अतः बिलाम ने क्रोधित होकर उस गधी को अपनी लाठी से पीटा, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। ध्यान दें, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और उसने बिलाम से कहा, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? इस पर बिलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे ठट्टा का कारण बनाया। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अब तक मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू आज तक अर्थात जीवन भर सवारी करता आया है? क्या मैंने कभी और भी तेरे साथ ऐसा किया है? उसने कहा, नहीं। सो इन पदों में हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने बिलाम को जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि यदि तू जाना ही चाहता है तो अवश्य जा, परंतु जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वही तुझको बोलना है। और 27-28 पदों में हमने बड़ी आश्चर्यजनक बात को देखा है कि परमेश्वर पिताजी अपने संदेश को पहुंचाने के लिए एक दुर्बल पशु का, एक अबोध गधी का प्रयोग करते हैं। एक मूर्ख पशु के द्वारा एक हठीले व लालची व बुद्धिहीन नबी को अपना संदेश देते हैं। और 29 और 30 पदों में हमने देखा कि परमेश्वर का दूत जाकर एक बार पुनः बिलाम को सावधान करता है कि जो कुछ प्रभु तुझसे कहे वही तुझे बोलना है, और इस प्रकार बिलाम बालाक से भेंट करने के लिए चल पड़ा। तब 31 पद से आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने यहोवा के दूत को अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़े देखा और मुंह के बल गिर पड़ा। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तेरा विरोध करने आया हूं क्योंकि तेरी चाल मेरी दृष्टि में टेढ़ी है, और इस गधी ने मुझे देखा और वह 3 बार मेरे सामने से हट गई। यदि वह मेरे सामने से न हटती तो मैं निश्चय तुझको अभी मार डालता और उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मुझसे पाप हुआ है क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे विरुद्ध मेरे मार्ग में तू खड़ा है, इसलिए यदि अब तुझे ये बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। परंतु यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, तू इन मनुष्यों के साथ चला तो जा, किंतु तू वही कहना जो मैं तुझसे कहूं। अतः बिलाम बालाक के अधिकारियों के साथ चला गया। मित्रों, इन पदों में हमने स्पष्ट रूप में पढ़ लिया है कि बिलाम किस प्रकार का व्यक्ति था, और यही कारण है कि पवित्र बाइबल इस व्यवहार को बिलाम के मार्ग के नाम से संबोधित करती है। झूठे भविष्य वक्ता के विषय में बताते हुए प्रेरित पत्रस अपनी दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय के 15 और 16 पदों में इस प्रकार लिखते हैं कि बिलाम का मार्ग लालसा और लालच से भरा हुआ था। मित्रों, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे और आपको लालच के पाप से बचा कर रखे, अर्थात हमारी लालसाओं पर अपना नियंत्रण रखे। और तब अग्रिम पदों में हम देखते हैं 36 से 41 पदों में बालाक राजा बिलाम को पर्वत की चोटी पर ले जाता है और जहां से वो भली भांति इसराइलियों की छावनी को देख सके। और तब 38वें पद में लिखा है, अतः बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आ तो गया हूं, फिर भी क्या मैं जो चाहूं बोल सकता हूं? जो वचन परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही तो मैं बोलूंगा। और अंतिम पद में 41वें पद में वो कहता है, तब सवेरे ऐसा हुआ कि बालाक ने बिलाम को साथ लिया और उसे बाल देवता के ऊंचे स्थान तक ले आया और वहां से उसे छावनी की छोर तक दिखाई पड़ा। मित्रों, अब बालाक उसे ऐसे स्थान पर ले गया है जहां से वो स्पष्ट रूप में भली भांति इसराइलियों की छावनी को देख सके। बिलाम एक दुचित्ता मनुष्य है, वो संसार और परमेश्वर दोनों को प्रसन्न करना चाहता है, परंतु परमेश्वर ने इस व्यक्ति पर अपना नियंत्रण कस लिया है क्योंकि ये हठीला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा जान लेने के पश्चात भी अपनी इच्छा को प्राथमिकता देता है। वह स्पष्ट रूप से राजा बालाक से नहीं कह सकता कि मैं तेरी नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करूंगा। वो बालाक राजा की ओर से कार्य करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे रोके रखा और उसके मुख में अपना वचन डाल दिया। मित्रों, परमेश्वर दुचित्ते और लोभी सेवकों का सामना करता है। और अब 23वें अध्याय में हम देखेंगे कि बिलाम ने क्या त्रुटि की, और इसलिए 23वें अध्याय का शीर्षक है बिलाम की त्रुटि। स्मरण रखें, परमेश्वर पिता बिलाम का सामना कर रहे हैं। उन्होंने उसका मार्ग सही करने के लिए साधारण गधी को प्रयोग किया। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर पिताजी इस आत्मिक बुद्धिहीन लालची व हठीले व्यक्ति को किस प्रकार अपने लिए प्रयोग करते हैं। आइए देखें 23वें अध्याय के 1-10 पदों में हम बिलाम द्वारा प्रथम भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं। 1-6 पदों में बताया गया है कि बालाक बिलाम को बाल देवता के ऊंचे स्थान पर ले जाता है। वहां पर ये लोग 7 वेदियां बनाकर उन पर होम बलि चढ़ाते हैं, परंतु हम यहां अति रुचिकर बात देखते हैं कि इस स्थान पर प्रभु परमेश्वर ने बिलाम के मुख में अपना वचन डाला। और 7-12 पदों में बताया गया है कि इसराइलियों से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यहां पर हमारे सामने आती है। मित्रों, स्मरण रखें, ये वो बातें हैं जो बालाक कदापि नहीं चाहता था, और वो इस भविष्यवाणी से संतुष्ट नहीं था। इसलिए वो बिलाम को एक अन्य पर्वत शिखर पर ले जाता है कि वो वहां से इसराइलियों को घाटी में छावनी डाले हुए देख सके और उन्हें भली भांति देखकर श्राप दे सके। तब 13-17 पदों में हम दूसरी आशीष वचन को पढ़ते हैं, और इन पदों में हम देखते हैं कि बालाक राजा बिलाम को पिसगा की चोटी पर ले जाता है, और यहां पर भी वो होम बलि चढ़ाता है, और इस स्थान से वो इसराइल की छावनियों को अच्छी तरह से देख सकते थे, और इस स्थान पर भी परमेश्वर पिताजी दोबारा से बिलाम से मिलते हैं और अपना वचन उसके मुख में डालते हैं। और तब 18-24 पदों में हम पढ़ते हैं कि इस बार भी बिलाम इसराइल को श्राप देने के लिए तैयार होता है, परंतु श्राप के स्थान पर वो उन्हें आशीर्वाद देता है, और परमेश्वर पिता ने उसे ये बात स्पष्ट कर दी कि उसको इसराइल को श्राप नहीं देना है। मित्रों, मैं कुछ समय बिलाम की त्रुटि पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। बिलाम परमेश्वर की धार्मिकता की ओर से लापरवाह है। वो नहीं जानता कि मानवीय धार्मिकता से ऊपर भी परमेश्वरीय धार्मिकता है। इसराइल परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं, इनके ऊपर परमेश्वर का दंड नहीं पड़ेगा, वे परमेश्वर द्वारा दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। इसी प्रकार एक विश्वासी जब दोबारा पाप करता है तो वो परमेश्वर द्वारा अपराधी नहीं ठहराया जाता, परंतु परमेश्वर पिता उसे अनुशासित करने के लिए ताड़ना देते हैं। तब 27-30 पदों में 3रे वचन के विषय में लिखा है, तब बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझे एक और स्थान पर ले चलता हूं, संभवतः परमेश्वर की दृष्टि में ये उचित लगे कि तू मेरे लिए वहां से उनको श्राप दे। अतः बालाक बिलाम को पोर के शिखर पर ले गया, जहां से बंजर क्षेत्र दिखाई देता है। हम देखते हैं कि राजा बालाक किसी प्रकार से भी संतुष्ट नहीं है। वो बिलाम को पोर पर्वत के शिखर पर ले जाता है, इस विचार से कि संभवतः ये स्थान परमेश्वर को उचित लगे और बिलाम वहां से मेरे लिए इसराइलियों को श्राप दे। हम देखते हैं कि बिलाम ने वहां भी 7 वेदियां बनाई और होम बलि चढ़ाई है। मित्रवर, ये बिलाम कैसा नबी है? ये परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट रूप में जान चुका है, फिर भी परमेश्वर के विरोध में डटा हुआ है। वो बालाक को संतुष्ट करना चाहता है। क्या यह हमें से अनेक लोगों का चित्र नहीं है? मेरे मित्र, हमें परमेश्वर की इच्छा जानने के पश्चात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकते। अभिनी वचनों के अनुसार प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।
कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।